कितना सुंदर उपदेश है भगवान का। आज के लोग और कितना गिर गए हैं, तो कहीं आक्रमण करते हैं तो ये विचार करते हैं क्या कि वो लोग सोए हुए हैं या कोई खा रहा हो, कोई सावधान नहीं। पहले जो युद्ध होता था सैनिकों में होता था, एक सेना दूसरे सेना के साथ लड़ती थी, और अब इसका कोई विचार नहीं। कहीं भी अटैक करो, किसी की भी हत्या कर दो, बहुत पाप बढ़ गया। कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसी समय अटैक करो, मारो। वास्तव में ये राक्षसों का काम है। तो भगवान बता रहे हैं कि अपना शत्रु भी अगर इन दशाओं में हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए, पर इसने वध किया। और एक और नीति भगवान बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा पापी है, दूसरे जीवों की हत्या करके, दूसरे को सता करके अपना शरीर पोष रहा है, तो उस व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, क्योंकि वो जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, और पाप करने के कारण उसकी दुर्दशा और ज़्यादा होगी नरकों में। इसलिए राजा को यह आदेश है कि वह ऐसे अपराधियों को, ऐसे पापियों को फांसी पर चढ़ा दे जिससे उनका किया गया पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, आगे दुख नहीं होता। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि राजा जिसको दंड देता है वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन यदि इस जीवन में पाप का दंड नहीं मिला तो कई गुना सजा उसको परलोक में भोगनी पड़ती। इसलिए भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, स्वप्राणान यह पर प्राण ही प्रपुष्णात घृण खल तद वधस तस ही श्रेयो जद्दोषा जात्यधः पुमान। जो व्यक्ति स्वप्राणान अपने प्राणों को, अपने शरीर को दूसरे के शरीर को बिगाड़ करके पोषता है, ऐसे पापी का वध कर देना ही उसका हित है। उसका इसी में हित है कि उसका वध कर दिया जाए। हम लोगों को इस संसार में जीने का अधिकार है, ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना चाहिए, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह ट्रक पर भी जहाँ तहाँ लिखा करते हैं जियो और जीने दो। जियो, जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को भी जीने का अधिकार है। दूसरे को मार करके जीने का अधिकार हमको नहीं है। ये भगवान सब देखते हैं। दूसरे लोग जी रहे हैं दूसरे जीवों की हत्या करके, खा करके, लगता है कि जैसे वो मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे ही नहीं। पशुओं का वध करते हैं, पक्षियों का वध करते हैं, मनुष्यों को भी बहुत सताते हैं, और लाभ क्या है? बस जीने के लिए। लेकिन इस संसार में तो देखा जा रहा है कि जो लोग मांस नहीं खाते हैं वे भी जीवित रहते हैं और मांसाहारियों से अधिक आयु के होते हैं। ये रिकॉर्ड निकाला गया है संसार में, शाकाहारी अधिक दिन जीवित रहते हैं और मांसाहारी कम दिन जीवित रहते हैं। मैं पढ़ा था, रिकॉर्ड निकाला गया है। पशुओं में भी जो शाकाहारी हैं, पेड़ पौधे झाड़ आदि खाते हैं, वे ज़्यादा जीते हैं। हाथी बहुत दिन जीवित रहता है। यदि हाथी को स्वतंत्र रखा जाए जीने के लिए तो लोग बताते हैं कि हाथी 400 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि बाघ, सिंह आदि ये सब बहुत कम दिन जीवित रहते हैं, ये जल्दी मर जाते हैं। अगर मांस खाने से ये बहुत दिन जीवित रहते तो ये लोग भी, अगर कोई बहुत दिन जीवित रह सकता था तो ये लोग क्यों नहीं रहते? तो भगवान कहते हैं कि अपने नाशवान देह को पोषने के लिए दूसरे के देह को काट करके कोई व्यक्ति खाता है, सताता है, तो ऐसे पापी का तत्काल वध कर देना चाहिए। तद वधस तस्य ही श्रेयो, उसका वध कर देना ही उसका कल्याण करना है। क्योंकि जद दोषाद याति अधः पुमान, क्योंकि दूसरे जीवों को सताने से, मारने से वह और अधः जाती, अधोगति में जाता है। प्रत्येक कर्म का फल बन रहा है। हम लोगों को भले मालूम न हो यह बात दूसरी है, लेकिन कर्म का फल बन रहा है। कई ऐसी सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे बच्चे या अगर नहीं समझते हैं, लेकिन फल तो बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फालतू फोन किया करे जहाँ तहाँ इंटरनेशनल कॉल इधर उधर और कहे कि नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ कि बिल बन रहा है, लेकिन जिस दिन बिल आएगा तब पता चलेगा ना कि ओ हमने ये सब किया था। लेकिन वर्तमान में कोई अज्ञ व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूँ कहाँ बिल बन रहा है, हमको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर भी मनुष्यों का बनाया हुआ नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारी जानकारी के बिना भी कर्म बंधन लगता रहता है, बिल बनता है और सब होता है। आप लोग तो और ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह चल गया है तो वो और सूक्ष्म नियम, बैंक में रुपया कटता जाता है, क्या क्या होता जाता है। तो जब मनुष्यों के बनाए हुए नियम इतने सूक्ष्म हैं तो फिर ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियम कितने सूक्ष्म होंगे और कितने पक्का। एक एक कर्म का फल बनता है और भोगना पड़ता है, भगवान के विधान से कोई बच नहीं सकता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति दूसरे के शरीर को नुकसान करके, काट करके, मार करके, हत्या करके खाता है, चाहिए राजा को कि उस व्यक्ति का वध तुरंत कर दे। इसके अनुसार तो जितने गाय खाने वाले हैं उनका वध कर देना चाहिए। अगर सुंदर शासन हो परीक्षित जैसा, तो जो गोमांस खाते हैं या अन्य पशुओं को मार करके खाते हैं उनको जीने का अधिकार इस संसार में नहीं है। अब तो सत्ता ही दूसरे लोगों के हाथ में है, इस वेद शास्त्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। तो दूसरे को, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है लेकिन दूसरे को सता करके, दूसरे को मार करके नहीं। तो इसने बच्चों की हत्या किया और रात में सोते समय, इसलिए इसका वध होना चाहिए। भगवान अनेक शास्त्र युक्ति, लौकिक युक्ति दे रहे हैं और सब परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि भगवान कुपित नहीं। प्रतिश्रुतम तब च भवता पांचाल्य शिण्वतो मम आहरिषे शिरस्तस्य जस्ते मानिनि पुत्रः। तुमने मेरे सुनते सुनते प्रतिज्ञा किया है पांचाली के पास भगवान कह रहे ये भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करता है वह भी अधोगामी होता है। तुमने प्रतिज्ञा किया है ना, प्रतिश्रुति दिया ना, क्या प्रतिश्रुति दिया है कि आहरि से शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्र है। हे मानिनी, हे प्रिय द्रौपदी, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका सिर आहरि से, उसका सिर लाऊंगा, उसका सिर लाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि सिर काट कर लाऊंगा, तो शरीर के साथ सिर ले जा रहे हैं सिर तो ले ही जा रहे हैं लेकिन भगवान के कहने का आशय था कि सिर काट करके ले चलो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि उसका सिर लाऊंगा। अर्जुन जब प्रतिज्ञा कर रहे थे उस समय भी ये भूले नहीं थे कि यह हमारा गुरुपुत्र है, हमारे गुरु जी का उपकार हमारे जीवन में बहुत है, अतः मैं गुरुपुत्र का वध नहीं करूंगा। ये भावना उनकी शुरू से ही थी, लेकिन वो रो रही थी तो उसको समझाने के लिए कुछ इन्होंने कह दिया। लेकिन जब पकड़े तब वध नहीं कर रहे थे। तो भगवान बारंबार तर्क दे रहे हैं, तुमने प्रतिज्ञा किया है मेरे सुनते सुनते, मैं साक्षी हूँ, सुना हूँ, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो। इस प्रकार की बातें भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि इसके इस कार्य से इसके स्वामी दुर्योधन का हित हुआ होता तब भी माना जाता कि जिसका खाया है, जो इसका भरण किया है, उसका कुछ काम किया। लेकिन भर्तुश्च विप्रियं वीरः कृतवान कुलपांसना, यह कुलंगार अपने कुल में दाग लगाने वाला, यह अपने स्वामी दुर्योधन का भी अहित किया, उसका भी हित नहीं किया। वो घटना इस प्रकार की है, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर रात्रि में ले गया दुर्योधन के पास, तो उसने कहा रात्रि में, स्वामिन स्वामिन, मैं पांचों पांडवों का मस्तक काट करके लाया हूँ। रात्रि का समय था, वो इसलिए झूठ बोला कि दुर्योधन सुन करके बहुत प्रसन्न होगा, पांचों पांडवों का मस्तक काट करके लाए। हाँ हाँ, पांचों पांडवों का मस्तक काट करके लाया। तो दुर्योधन को कुछ संदेह हो गया, संदेह हो गया कि भगवान कृष्ण के रहते हुए और पांचों पांडवों का मस्तक काट लेना कैसे संभव हो सकता। पहले तो उसे खुशी हुई, ठीक है पांचों पांडवों का मस्तक काट लिया, आनंद हुआ, लेकिन बाद में तुरंत सस्पेशन हुआ तो मांगा कि जरा वो मस्तक दो तो मैं टेस्ट करूं कि पांडवों का मस्तक है कि दूसरे का। तो ले करके दुर्योधन रात्रि में एक हाथ से मस्तक दबाता था तो मस्तक फूट जाते थे, कोमल बच्चों के मस्तक थे। तो उसने कहा कि ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये किसी दूसरे के हैं। तब दुर्योधन, तब अश्वत्थामा सत्य बोला, कहा कि हाँ ये पांडवों के मस्तक नहीं है, उनके बच्चों के हैं। इस पर दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, दुख अपनी अपकीर्ति के लिए हुआ, पांडवों पर दया करके नहीं। उसने सोचा कि वो संसार में मेरी बदनामी होगी कि बच्चों की हत्या करवाया, यही भेजा होगा अश्वत्थामा को, इस बात के लिए उसे बड़ा दुख हुआ। और पहले सुख हुआ था, दुर्योधन को यह साप था कि जिस समय इसके मन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ आएंगे उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो एक प्रकार से अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मारा, यद्यपि किया काम उसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन प्रसन्न नहीं कर सका बल्कि उसके मरण का कारण बन गया। तो भगवान यह भी कह रहे हैं कि दुर्योधन का भी इसने प्रिय नहीं किया, जिस दुर्योधन ने इसका भरण पोषण किया, पाला पोसा राजा, उसका भी विप्रिय किया, अप्रिय किया, इसलिए इसका वध करो। तदसव बद्धताम पाप आत्ताई आत्मबंध हुआ भर्तुश्च विप्रियम वीरकृतवान कुलपांसन, इसलिए अभी अभी इसका वध करना चाहिए, अभी वध करो, यह आतताई है, ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मण में जन्म लेकर के इसने ब्राह्मण जाति को कलंकित किया है, इसलिए इसका वध करो, वध करो। लेकिन अर्जुन इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे कि गुरु के उपकार को भूल जाए। एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णे न चोदिता नैछद हंतुम गुरुसुतम जदप्यात्महनम महान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, बहुत बहुत बातें कह करके परीक्षा ले रहे थे रथ पर चलते समय, फिर भी अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किए। भगवान बार बार दोहरा रहे थे क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं इसको मारते हो, लेकिन अर्जुन नहीं मारे। क्यों? कि महान अर्जुन, महान पुरुष। जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखे हमेशा और उसका प्रतिउपकार करना चाहे, उसको महान कहते हैं। जीवन में हमारे लिए किसने क्या किया है इस बात को याद रखना चाहिए। सबसे पहला उपकार व्यक्ति को माता पिता का रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, कितनी कितना दुख सह करके माता पिता पालन करते हैं, बच्चे का उत्कर्ष करते हैं, उसे याद रखना, भगवान का उपकार याद रखना, और समाज में कोई भी किसी ने कुछ किया है तो उस उपकार को याद रखना चाहिए। और जिसने आज पहले उपकार किया है और आज उसके द्वारा थोड़ा अपकार भी हो जाए तब भी उसे सहना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अर्जुन बहुत महान पुरुष थे, सब कुछ सहने वाले थे। उनके पांचों पुत्र मारे गए हैं फिर भी वे मारने वाले का वध नहीं किए, केवल पकड़ लिए। भगवान कह रहे हैं कि मारो मारो, लेकिन फिर भी नहीं मारे। तो रस्सी में बंधे बंधे अश्वत्थामा को वे द्रौपदी के पास ला रहे थे, चूंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, शिविर में पड़ी हुई थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी, और अर्जुन पशु की तरह अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को बांध कर लाए थे। द्रौपदी को उन्होंने निवेदित किया कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा यहाँ उपस्थित है और भगवान कृष्ण भी वहाँ थे, युधिष्ठिर महाराज थे, नकुल, सहदेव, भीमसेन सब जुटे हुए थे। जब पकड़ करके लाया गया अश्वत्थामा को, सारा समाज जुटा था और कुंती आदि स्त्रियाँ भी जुटी थी, बहुत सी स्त्रियाँ जुटी थी और पांडव और भी जो लोग थे। तो अर्जुन निवेदित किए, दिए अश्वत्थामा तथा हृतम पशुपाश बद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन ननाम कृष्णापकृतम गुरुसुतम वाम स्वभाव कृपया ननाम उवाच चा सहन तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। आप जरा विचार कीजिए, द्रौपदी के पांचों पुत्र मार दिए गए थे, वो बेचारी रो रही थी और जिसने उन उसके पुत्रों की हत्या की है उसको बांध करके लाया गया था। तो जब द्रौपदी ने देखा कि द्रोणाचार्य के पुत्र अर्थात गुरु के पुत्र को पशु की तरह बांध करके लाया गया है, तो वो उसको सहन नहीं हुआ और उसने प्रणाम किया गुरुपुत्र को, अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि वाम स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव बहुत अच्छा था, वाम का अर्थ मनोहर, सुंदर, सुंदर स्वभाव था। उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके तत्काल ही ये कहना चालू की, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, खोल दीजिए इनको, मुक्त कीजिए मुक्त कीजिए, ये ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु हैं, इनको क्यों बांध करके लाए। इतनी महानता द्रौपदी में है, इसीलिए तो भगवान इसको अपनी बहन कहने में सुख का अनुभव करते थे। जिस समय चित दुखी है, शोक से ग्रस्त है, उस समय इस तरह से गुरु के उपकार की याद रखना यह बहुत कठिन बात है। अर्जुन भी शोक से ग्रस्त थे लेकिन फिर भी अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किए। द्रौपदी शोकग्रस्त थी लेकिन उस समय भी उसने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि गुरुपुत्र के बंधन को सह नहीं सकी। उवाच च असहन्ति अस्य बंधनानेन, बांध करके लाना सहन नहीं की। और सबसे पहला एक्शन के उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पति अर्जुन से कहा, मुच्यता मुच्यता में ये ब्राह्मण खोल दिए जाएं, खोल दिए जाएं, ये सब तरह से हमारे गुरु हैं, गुरु के पुत्र हैं। यह धर्म की बात थी।